अग्निदेव ने सोचा कि जिस कार्य को आज तक कोई भी नहीं कर सका, उस कार्य को श्री कृष्ण और अर्जुन मिलकर अवश्य कर देंगे। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने मिलकर खांडव वन को जलाने में अग्निदेव की सहायता की। इसके फलस्वरूप अग्निदेव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को ये दिव्य रथ दिया था, जिसमें इस समय श्री कृष्ण और अर्जुन बैठे हुए हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन के संघ दिव्य हैं, उसी प्रकार उनका ये रथ भी दिव्य है। इस रथ की ध्वजा में बानर का चिन्ह है। बाद में इस बानर के चिन्ह में साक्षात हनुमान जी विराजमान हो गए, तथा जिस समय अर्जुन का रथ चलता था, उस समय रथ के पहियों की घरघराहट के साथ हनुमान जी की गर्जना भी मिल जाती थी, तथा इस प्रकार अर्जुन के रथ से अत्यंत भयंकर आवाज निकलती थी, जो शत्रुओं के हृदय को विदीर्ण कर देती थी। श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति असीमित प्रेम होने के बावजूद भी श्री कृष्ण इस प्रेम को और भी अधिक बढ़ाना चाहते थे। देखा, श्री कृष्ण और चाहते हैं प्रेम बढ़े, श्री कृष्ण अभी भी संतुष्ट नहीं है। हरि बोल। इसलिए जिस समय श्री कृष्ण और अर्जुन के पराक्रम से इंद्रिय देवता पराजित हुए तथा प्रसन्न होकर उन्हें वर देना चाहते थे, इंद्र वरदान देना चाहते थे, उस समय श्री कृष्ण ने इंद्र से ये वर मांगा, क्या कि उनकी अर्जुन से मित्रता क्षण क्षण बढ़ती जाए। देखो भगवान है, क्या वरदान मांग रहे हैं इंद्र से, कि अर्जुन के साथ जो मित्रता है वो क्षण क्षण बढ़ती जाए और कभी ना टूटे। यद्यपि श्री कृष्ण समस्त वरदानों के स्वामी हैं, परंतु फिर भी कितना आश्चर्य है कि वे अपने भक्त के प्रति प्रेम के भूखे रहते हैं। जिस प्रकार गोपियों ने कात्यायनी का व्रत करके श्री कृष्ण की प्राप्ति का वरदान मांगा था, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इंद्र से अर्जुन के साथ अपनी मित्रता का वरदान मांगते हैं। जब गोपियां कात्यायनी की पूजा करती हैं तो क्या मांगती हैं? श्री कृष्ण की प्राप्ति कात्यायनी से। और कृष्ण इंद्र से मांगते हैं क्या वरदान? अर्जुन की मित्रता। देखिए कितना आश्चर्य है। अब एक और लेख है भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 24वां श्लोक पर जो मैंने लेख लिखा है, तो चूंकि उस श्लोक में श्री कृष्ण को हृषिकेश कहा गया है, अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है, पहले अध्याय का 24वां श्लोक है, जिसमें हमने लिखा है संजय ने इस श्लोक में श्री कृष्ण को हृषिकेश तथा अर्जुन को गुड़ाकेश कहा है। हृषिकेश और गुड़ाकेश ये दोनों नाम कैसे लगते हैं? एक जैसे हैं, हृषिकेश गुड़ाकेश एक जैसे लगते हैं। इन नामों का प्रयोग करके संजय धृतराष्ट्र को यह संकेत कर रहे हैं कि अर्जुन तथा श्री कृष्ण में अत्यंत घनिष्ठता है। चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारे और मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उनका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं है। इससे पता चलता है कि श्री कृष्ण तथा अर्जुन क्या है? जन्म जन्म के मित्र हैं। श्रील प्रभुपाद उक्त श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्थक भक्ति भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसे ही भक्त हैं, और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का प्रवचन सूर्य देव से किया था, तो समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित थे, किंतु भगवान तथा अर्जुन में अंतर है। क्या अंतर है? भगवान और अर्जुन में अंतर है। क्या अंतर है? कि भगवान ने ये घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सके। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। 11वें अध्याय के 41वें और 42वें श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण का विश्वरूप देखकर कहते हैं, 41वां 42वां श्लोक अध्याय 11, तो अर्जुन क्या कहते हैं? आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे जैसे संबोधनों से पुकारा है। सखेति मत्वा प्रसभम्युक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था, मैंने मूर्खता बस या प्रेम बस जो कुछ भी किया है कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। इन बातों से पता चलता है, क्या पता चलता है, कि श्री कृष्ण तथा अर्जुन में कितनी घनिष्ठता थी। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। 18वें अध्याय का 64वां श्लोक, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूं, इसे अपने हित के लिए सुनो। क्या है, सर्व गुह्यतम भूया तृण में परम मचा। इसके अगले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। इन विवरणों से पता चलता है कि श्री कृष्ण अर्जुन से अत्यंत घनिष्ठ है। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण तथा अर्जुन का वध करने के लिए आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, किसने, अश्वत्थामा ने, किसको मारने के लिए, श्री कृष्ण और अर्जुन को मार डालने के लिए आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। तो तथा उससे जब श्री कृष्ण और अर्जुन को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई तो अश्वत्थामा के संदेह को दूर करने के लिए व्यास जी ने उसे बताया, प्राचीन काल में श्री कृष्ण और अर्जुन ने धर्म के पुत्रों के रूप में नारायण और नर के नाम से जन्म लिया था। क्या समझे, व्यास जी ने बताया अश्वत्थामा को, क्या बताया, कि प्राचीन काल में अर्जुन और कृष्ण ने नर और नारायण के रूप में धर्म के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। ये दोनों ऋषि हैं, संसार को धर्म मर्यादा में रखने के लिए प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं, साथ साथ रहते हैं, हर युग में अवतार लेते हैं अर्जुन कृष्ण, धर्म की मर्यादा की स्थापना करने के लिए साथ साथ अवतार लेते हैं अर्जुन और कृष्ण। एक बार ब्रह्मा जी ने भी बृहस्पति, शुक्राचार्य और इंद्र आदि देवगण को संबोधित करके कहा, ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को भी बताया, शुक्राचार्य को बताया और सब देवताओं को बताया। किसने बताया, ब्रह्मा जी ने बताया, क्या बताया, ये प्रबल पराक्रमी महाबली नर नारायण ऋषि हैं, जो अपने तेज से पृथ्वी एवं स्वर्ग को प्रकाशित कर रहे हैं। इन्होंने अपने कर्म से संपूर्ण लोगों के आनंद को बढ़ाया है। इन्होंने परस्पर अभिन्न होते हुए भी असुरों का विनाश करने के लिए दो शरीर धारण किए हैं। ये अत्यंत बुद्धिमान तथा शत्रुओं को संतप्त करने वाले हैं। समस्त देवता और गंधर्व इनकी पूजा करते हैं। ये दोनों ऋषि हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन के विषय में भीष्म जी ने भी दुर्योधन से कहा था, भीष्म जी ने दुर्योधन से क्या कहा था, इस युद्ध में जो अर्जुन और श्री कृष्ण एकत्र हैं, ये दोनों नर नारायण नाम के प्राचीन देवता ही हैं। इन्हें इस संसार में इंद्र के सहित देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। इनमें श्री कृष्ण नारायण हैं और अर्जुन नर हैं। इस श्लोक में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं। इस संबंध में एक घटना का वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत में आता है। अब इस घटना को और विस्तार से लिखा गया है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे तो वे कहां पहुंचे, श्री रंग क्षेत्र में पहुंचे। उस क्षेत्र में एक वैष्णव ब्राह्मण रहता था, वो श्री रंगनाथ जी के मंदिर में बैठकर श्री गीता जी का पाठ किया करता था। 18वां अध्याय आनंद आवेश में नित्य पढ़ा करता था रोज। कितना? 18 अध्याय पूरी गीता के आनंद के आवेश में पढ़ा करता था, किंतु वह अशुद्ध पढ़ता था। उसका पाठ शुद्ध नहीं था, अशुद्ध पाठ था, जिसे सुनकर लोग उसका उपहास किया करते थे। कोई तो उसकी हंसी करता, कोई उसकी निंदा भी करता, किंतु वह ब्राह्मण किसी की कुछ भी परवाह नहीं करता था और आविष्ट होकर आनंद पूर्वक श्री गीता जी का पाठ किया करता। उसे पाठ करते समय पुलक, अश्रु, कंप, स्वेद आदि सात्विक विकार हुआ करते थे। स्वेद का मतलब पसीना, आनंद से पसीना आता था उसके शरीर में और अश्रु बहते थे, पुलकायमान होता है, कांपता था। श्री महाप्रभु ने उसे जब देखा तो वे बहुत आनंदित हुए। महाप्रभु जी ने उससे सम्मान पूर्वक पूछा। महाप्रभु सम्मान पूर्वक पूछते हैं, बाकी लोग तो हंसते थे या निंदा करते थे। महाप्रभु ने सम्मान पूर्वक पूछा, गीता के किस अर्थ को जानकर आपको इतना सुख होता है? भगवान पूछते हैं कि आपको इतना सुख गीता के कौन से अर्थ को जानकर क्यों होता है? गीता में तो कई अर्थ हैं, है ना। तो उस ब्राह्मण ने कहा, मैं तो मूर्ख हूं और श्लोकों का शब्दार्थ नहीं जानता, शुद्ध या अशुद्ध जैसे भी हो, मैं तो गीता पाठ करता हूं। मेरे गुरुदेव का ऐसा मेरे गुरुदेव का आदेश है। अर्जुन के रथ पर श्री कृष्ण घोड़ों की लगाम पकड़े हुए बैठे हैं, उनके हाथ में चाबुक सुशोभित है और वे अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। ये देखकर मुझे आनंद का आवेश होता है और मैं कुछ जान नहीं पाता हूं कि गीता में और क्या गीता में और क्या बातें कही गई हैं, ये मुझे कुछ पता नहीं चलती हैं। भाई मैं इतनी सोच करके आनंद का आवेश होता है मुझे। जब तक मैं पाठ करता रहता हूं तब तक मुझे ऐसे दर्शन होते रहते हैं, इसलिए मेरा मन गीता पाठ को छोड़ नहीं सकता। श्री महाप्रभु ने कहा, गीता पाठ में वास्तव में तुम्हारा ही अधिकार है। तुम जो कुछ जानते हो वही गीता का सार अर्थ है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? जो कुछ तुम जानते हो वही गीता का सार अर्थ है। इतना कहकर प्रभु ने उस ब्राह्मण का आलिंगन किया। इसके पश्चात वह ब्राह्मण अनुभव करने लगा कि जिन श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था, वे ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में उसका आलिंगन कर रहे हैं। इस घटना से हम ये समझ सकते हैं कि भगवत गीता को समझने के लिए हमें श्री कृष्ण और अर्जुन की महिमा को समझना होगा। भगवत गीता की पुस्तक में श्री कृष्ण और अर्जुन का चित्र होना आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित भगवत गीता यथारूप में सबसे पहले मुख्य पृष्ठ पर श्री कृष्ण तथा अर्जुन का अत्यंत सुंदर चित्र है, अत्यंत सुंदर चित्र है, जिसमें श्री कृष्ण रथ चला रहे हैं, श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की लगाम है, देख रहे हो, और दाएं हाथ में लगाम और चाबुक दोनों हैं, देख रहे हैं। पीछे अर्जुन रथ में खड़े हैं, है कि नहीं, खड़े हैं कि नहीं। अर्जुन शत्रुओं की ओर देख रहे हैं, उनके बाएं हाथ में गांडीव धनुष है, है कि नहीं, और दाएं हाथ पीछे तरकस में से बाण निकाल रहा है। फिर मुख्य पृष्ठ के अंदर तथा पीछे के पृष्ठ के अंदर भी अलग अलग दो पृष्ठों का सुंदर चित्र है, दो पृष्ठों का चित्र ये दोनों में है, मतलब पृष्ठ मुख पृष्ठ के अंदर और पीछे के पृष्ठ के अंदर, मतलब शुरू में और आखिरी में, दोनों जगह दो पृष्ठों का चित्र है। हाँ, जिसमें दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा है, खड़ा है दोनों सेनाओं के बीच में, श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की लगाम है और श्री कृष्ण का मुख और दायां हाथ अर्जुन की ओर मुड़ा हुआ है, मुड़ा है, मुख भी मुड़ा है और दायां हाथ भी मुड़ा है। अर्जुन का बायां हाथ दोनों सेनाओं की ओर संकेत कर रहा है, देख रहे हैं, और दायां हाथ में पकड़ा हुआ गांडीव धनुष खिसक रहा है, खिसक रहा है। फिर पुस्तक के अंदर रंगीन चित्रों में पांचवी संख्या पर अर्जुन और श्री कृष्ण का चित्र है, अब देखिए रंगीन चित्रों में आप निकालिए, पांचवी संख्या में अर्जुन और श्री कृष्ण का चित्र है, जिसमें अर्जुन निराश होकर धनुष बाण त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठे हुए हैं तथा श्री कृष्ण खड़े हुए अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। देख रहे हैं अर्जुन बैठे हैं और कृष्ण खड़े हैं। श्री कृष्ण का बायां हाथ अर्जुन के कंधे पर है तथा दायां हाथ ज्ञान मुद्रा में है। कृष्ण की ज्ञान मुद्रा है। इसके बाद 14वीं संख्या पर अर्जुन और श्री कृष्ण का चित्र है। अब दुर्भाग्य से इस गीता में नहीं है, पहले गीता में था इसलिए इसमें अब नहीं। ये वाला तो है, हाँ ये आप निकालिए, ये वाला मिल जाएगा आपको। 14वीं संख्या पर अर्जुन और श्री कृष्ण का चित्र है, जिसमें अर्जुन श्री कृष्ण का विराट रूप देख रहे हैं। हाँ ये आप देख सकते हो, विराट रूप देख रहे हैं। अर्जुन के दोनों हाथ जुड़े हुए हैं और श्री कृष्ण बाएं हाथ से अपना विराट रूप दिखा रहे हैं और दाएं हाथ से अपने रहस्य को प्रकट करने का भाव जता रहे हैं। हाँ इसके बाद का जो चित्र है वो पहले था, अब नहीं है। 15वीं संख्या पर अर्जुन और श्री कृष्ण का चित्र है, जिसमें अर्जुन दोनों हाथ जुड़े हुए हैं। ये इसमें नहीं है, इस गीता में नहीं है। तथा श्री कृष्ण अपने विश्व रूप को समेट कर चतुर्भुज रूप बन जाते हैं। वो चित्र था पहले, विश्व रूप से चतुर्भुज रूप बनते हैं कृष्ण, तत्पश्चात अपने मूल द्विभुज रूप में आ जाते हैं। श्री कृष्ण अपने बाएं हाथ से अपने सरल स्वभाव का संकेत कर रहे हैं तथा अपना दायां हाथ अपने हृदय में रखकर अपने भक्त अर्जुन के प्रति स्नेह प्रकट कर रहे हैं। इसके पश्चात प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ में एक वृत्ति के अंदर अलग अलग अर्जुन और श्री कृष्ण का चित्र है। प्रत्येक वृत्ति में अध्याय के शुरू में है ना, प्रत्येक अध्याय की शुरुआत में एक वृत्ति में अर्जुन और श्री कृष्ण का चित्र है। तो ये चित्र भी अभी बदल चुका है, पहले जो चित्र था उसका वर्णन है जो मैं कर रहा हूं। उस चित्र में जो पहले था, अर्जुन के बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली थोड़ी के पास है, अर्जुन ऐसे कर रहे हैं अपनी तर्जनी उंगली से ऐसे कर रहे हैं है ना, जिससे वे श्री कृष्ण के समक्ष अपने संदेह प्रकट कर रहे हैं। ये संदेह प्रकट करने की मुद्रा है, अर्जुन संदेह प्रकट कर रहे हैं तथा उनका दायां हाथ श्री कृष्ण के उपदेशों के द्वारा उनके संदेहों के दूर होने का भाव प्रकट कर रहा है अर्जुन का दायां हाथ। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता यथारूप में अर्जुन और कृष्ण दोनों को एक साथ दिखाने वाले चित्रों की कुल संख्या 24 है। 18 चित्र तो ये हो गए हर अध्याय के प्रारंभ में, 18 ये हो गए है ना, और दो चित्र हो गए ये जो कि शुरू में और आखिरी में है, 20 हो गए, और एक हो गया मुख पृष्ठ पर, कितना हो गए 21 हो गए है ना, और तीन चित्र हैं रंगीन अंदर है ना, तो कुल मिला के 24 चित्र हैं। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश और श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहने का एक अन्य भी कारण है। गुडाकेश शब्द से सूचित होता है यदि हम पर अर्जुन की कृपा हो तो हम गुडाका अर्थात निद्रा या तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। अर्जुन को गुडाकेश कहा गया था तो तमोगुण के प्रभाव से, निद्रा के प्रभाव से हम मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार जब हम तमोगुण से आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है, रजोगुण। रजोगुण में काम वासना के कारण हमारी इंद्रियां अत्यंत चंचल होती हैं। इस समय ऋषिकेश अर्थात श्री कृष्ण की यदि हम पर कृपा होती है तो हम ऋषि अर्थात इंद्रियों की चंचलता से मुक्त होते हैं। इस प्रकार हम रजोगुण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में अर्जुन और श्री कृष्ण हमें क्रमशः तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव से मुक्त करते हैं। गुडाकेश तमोगुण से मुक्त करते हैं और ऋषिकेश रजोगुण से मुक्त करते हैं। चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है, चौथे अध्याय का 39वां श्लोक, चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। अर्थात यदि किसी व्यक्ति के अंदर शास्त्र के प्रति श्रद्धा हो फिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह तत्पर अथवा जागरूक हो। मतलब गुडाकेश, तत्पर का मतलब गुडाकेश, मतलब जागरूक हो यानी निद्रा को जीते उसके पश्चात यदि वह इंद्रियों को भस्म करे, यानी ऋषिकेश भगवान इंद्रियों के स्वामी है, इंद्रियों को भस्म करे तो वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति में शास्त्र के प्रति श्रद्धा होना आवश्यक है। उसके बाद वह अर्जुन की कृपा से तत्परता प्राप्त कर सकता है और श्री कृष्ण की कृपा से इंद्रिय संयम करके भगवद गीता को समझ सकता है ना। तो अर्जुन और कृष्ण दोनों की आवश्यकता है, अर्जुन की कृपा और कृष्ण की कृपा दोनों की आवश्यकता है भगवद गीता को समझने के लिए। आपके अंदर श्रद्धा तो होनी चाहिए, ये तो आपकी आवश्यकता है, आपके अंदर श्रद्धा की आवश्यकता है। फिर अर्जुन की आवश्यकता है तमोगुण को जीतने के लिए और श्री कृष्ण की आवश्यकता है रजोगुण को जीतने के लिए, और तब आप जो है भगवद गीता को समझ सकते हैं। भगवद गीता को समझने का अर्थ है श्री कृष्ण को समझना, तथा श्री कृष्ण को समझने का अर्थ है श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना, श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने का अर्थ है श्री कृष्ण के भक्तों के मार्गदर्शन में श्री कृष्ण की सेवा करना, और श्री कृष्ण की सेवा करने का अर्थ है जीवन को सफल करना। तो इस प्रकार से हमने चर्चा की आज के श्लोक में संजय जो कह रहे हैं कि जहां पर योगेश्वर कृष्ण है और धनुर्धर अर्जुन है, वहीं पर श्री है, विजय है, विभूति है और ध्रुवा नीति है। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? इनका प्रश्न है कि श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए रजोगुण को नियंत्रित करने के लिए, तो अर्जुन की शरण तो पहले आवश्यक है। मैंने क्या बताया, अर्जुन का नाम गुड़ाकेश है। गुड़ाकेश का मतलब क्या है? गुड़ाका ईश, जो नियंत्रित करे गुड़ाका को। गुड़ाका मतलब क्या है? तमोगुण, निद्रा। निद्रा को गुड़ाका बोलते हैं, क्यों? क्योंकि गुड़ 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 होता है नींद में, क्या अंदर जब खर्राटे होते हैं ना तो क्या होता है, गुड़ 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 गुड़, है ना, तो इसलिए गुड़ाका बोलते हैं, है ना। तो गुड़ाका को नियंत्रण करने के लिए अर्जुन की आवश्यकता है तमोगुण को जीतने के लिए, और फिर रजोगुण। जब तमोगुण से कोई व्यक्ति ऊपर उठता है तो रजोगुण में बनता है, है ना, और इंद्रियां चंचल होती हैं रजोगुण में। तो भगवान कृष्ण ऋषिकेश है, इंद्रियों के स्वामी है, है ना। तो इंद्रियां आपकी बस में होंगी ऋषिकेश की कृपा से, है ना। तो फिर आप सत्वगुण में आते हैं, है ना, तत्र सत्वम निर्मलत्वा प्रकाशकम अनामयम। सत्वगुण में निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है, तो आप भगवद गीता का ज्ञान समझ सकते हैं, है ना। और कोई प्रश्न किसी का? तो इस श्लोक में संजय ने जो बताया है कि जहां अर्जुन और कृष्ण दोनों हैं तो वहां पर चार चीजें हैं। तो पहली चीज क्या बताई? स्त्री। तो यहां स्त्री को प्रभुपाद जी ने किस प्रकार समझाया? क्या स्त्री का मतलब? छह प्रकार के ऐश्वर्य, संपूर्ण धन, संपूर्ण बल, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण सौंदर्य, छह चीजें है ना। और उनमें एक चीज और क्या है छह में से? संपूर्ण त्याग, हाँ, वैराग्य। वैराग्य है जहां अर्जुन और कृष्ण, वहां पर संपूर्ण वैराग्य है। वो क्या है, किस रूप में? किस? हाँ, श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं, इससे बढ़कर कोई वैराग्य हो सकता है? जो संपूर्ण ब्रह्मांडों, असंख्य ब्रह्मांडों के नायक हैं, वो अर्जुन का रथ चला रहे हैं, इससे बड़ा कोई त्याग हो सकता है ना। तो संपूर्ण त्याग है, जहां अर्जुन और कृष्ण है वहां पर संपूर्ण त्याग है। तो स्त्री की व्याख्या प्रभुपाद ने इस प्रकार की है। इसके बाद फिर क्या है दूसरा? हाँ, तो स्त्री विजय, विजय है ना। तो विजय की व्याख्या प्रभुपाद ने क्या की, किस तरह से? युधिष्ठिर को विजय प्राप्त होने वाली है, युधिष्ठिर को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी अर्जुन और कृष्ण जहां पर हैं, है ना। फिर तीसरी चीज क्या है? समृद्धि, है ना। तो प्रभुपाद ने क्या बताया, विजय के बाद युधिष्ठिर महाराज को उत्तर उत्तर समृद्धि प्राप्त होगी, है ना। हाँ, उत्तर उत्तर जितना प्राप्त हो उससे और उनका राज्य भी बढ़ता जाएगा, हाँ उनका यश भी बढ़ता जाएगा, है ना, उनका प्रभाव बढ़ता जाएगा, हाँ उनका शासन बढ़ता जाएगा, तो उत्तरोत्तर समृद्धि प्राप्त होगी युधिष्ठिर महाराज को। तीन हो गया, और चौथा क्या है? हाँ कठोर नीति, ध्रुवा नीति, है ना। तो इसमें प्रभुपाद ने क्या बताया? युधिष्ठिर महाराज कठोरता से धर्म के नियमों का पालन करते थे, जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला युधिष्ठिर महाराज ने, है ना। तो इस प्रकार से अर्जुन और कृष्ण के कारण जो है युधिष्ठिर को विजय प्राप्त होने वाली है, और ध्रुवा नीति उनकी पहले से है, जिसके कारण अर्जुन और कृष्ण उनके साथ हमेशा रहते हैं, है ना। तो ये चार चीजें जो है यहाँ बताई गई हैं। अच्छा, और फिर हमने चर्चा की कि अगर कोई व्यक्ति भगवद गीता को ना भी समझ पाए तो भी भगवद गीता को जो है समझने का लाभ उठा सकता है। कैसे, क्या समझ करके वो भगवद गीता का लाभ उठा सकता है? श्री कृष्ण अर्जुन का ध्यान करते हुए गीता का पाठ करना है। हाँ, एक तो ये समझना कि कृष्ण भगवान है, और दूसरा अर्जुन उनके प्रिय भक्त हैं, है ना। तो इसका उदाहरण, हाँ, चैतन्य महाप्रभु गए कहा, श्री रंग क्षेत्र में, वहां रंगनाथ जी के मंदिर में एक ब्राह्मण पूरी गीता का पाठ करता था, लेकिन शिक्षित नहीं था, है? और उसको पुलक, अश्रु, कंपन, ये सब होते थे आनंद के कारण। तो चैतन्य महापुरुष स्वयं जाकर के उससे पूछते हैं कि गीता के किस अर्थ को जान करके आप इतना सुख प्राप्त करते हो? तो उसने क्या बताया? मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया कि मैं पूरी गीता का पाठ करूं, लेकिन मैं तो जानता नहीं गीता के शब्दों का अर्थ, तो मैं जानता नहीं, लेकिन जितनी देर तक मैं गीता पढ़ता रहता हूं उतनी देर तक मेरे दिमाग में क्या चित्र होता है? स्त्री कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं, हैं, और गीता का उपदेश दे रहे हैं, हैं? तो कृष्ण कितने दयालु हैं, अर्जुन कितने बड़े भक्त हैं कृष्ण के, और कृष्ण की अर्जुन पर कितनी कृपा है, मैं यही सोच रहा हूं और इसी में आनंद से मैं पुलकित होता रहता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन किया, हाँ, गीता का जो असली जो अर्थ है वो यही है, भगवद गीता का जो सार अर्थ है वो यही है, हाँ? आप ही जो है जानते हो गीता का सार अर्थ है, और उनका आलिंगन किया तो वो समझ गया, आलिंगन से उसको पता चल गया क्या कि जिन स्थिति कृष्ण ने अर्जुन पर कृपा की है, हैं, और उपदेश दिया है अर्जुन को गीता का, वही श्री कृष्ण मेरा आलिंगन कर रहे हैं और कोई नहीं है, है ना। तो साक्षात कृष्ण आलिंगन करने के लिए आ गए उसका, वो कहीं नहीं गया, है ना। तो इससे मतलब पता चलता है कि पूरा लाभ प्राप्त हो गया, जो अर्जुन को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ कृष्ण की संगति का, वो सौभाग्य उसको भी प्राप्त हो गया, जो कि अर्जुन और कृष्ण के संबंध का जो है चिंतन कर रहा है, अर्जुन और कृष्ण में कितनी घनिष्ठता है। और एक और घटना हमने बताई जिसमें कृष्ण वरदान मांगते हैं, क्या वरदान मांगते हैं? क्षण क्षण अर्जुन के साथ मित्रता बढ़ती जाए मेरी, भगवान को क्या वरदान की आवश्यकता है? लेकिन जब इंद्र ने कहा कि मुझसे वरदान मांगो आप, तो भगवान ने ही वरदान मांगा कि मित्रता कभी ना टूटे, अर्जुन से मेरी मित्रता कभी ना टूटे, हैं, और मित्रता क्षण क्षण बढ़ती रहे, ये वरदान मांगा। इस भौतिक संसार में होता नहीं ऐसा, मित्रता बनती है और फिर टूटती है, बनती टूटती रहती है हमेशा। लेकिन फिर अर्जुन कृष्ण के बारे में और क्या बातें बताएंगे कि जन्म जन्म के ये मित्र हैं, दोनों जन्म जन्म के मित्र हैं। तो किसने कहा, क्या कहा इसके बारे में? व्यास जी ने अश्वत्थामा को बताया, हाँ, और प्रत्येक युग में ये धर्म की स्थापना करने के लिए जन्म लेते हैं, ये किसने बताया? ब्रह्मा जी ने बताया। किसको बताया? शुक्राचार्य, बृहस्पति और सब देवताओं को बताया कि नर नारायण ऋषि जो है धर्म की स्थापना के लिए प्रत्येक युग में साथ साथ अवतार लेते हैं। तो ये जन्म जन्म के मित्र हैं अर्जुन और कृष्ण। अगर इस बात को समझ लिया तो आपने भगवद गीता समझ लिया। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के, श्री श्री राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा के, श्री श्री गौणदाय भगवान के, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा
राधा पार्वती जय हो जय हो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे राम हरे हरे,
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम राम
हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
हरे हरे।